Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana. तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली की पहली श्रुति है, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई घड़ा हो और उसके पास कोई डंडा वाला खड़ा हो और घड़ा फूट जाए तो लोग अनुमान लगाएंगे कि इस डंडी ने ही इस घड़े को फोड़ा है। और काहे से फोड़ा है, बोले इसके पास डंडा है, डंडा ही मारा होगा इसने। तो ब्रह्मवेत आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता है तो प्राप्त करने वाला तो हुआ ब्रह्म का जानने वाला, और जिसको प्राप्त किया वो हुआ परम अर्थात ब्रह्म। और जानने का कारण कैसे जाना, तो बोले जाना विद, ब्रह्मविद। जानने का साधन हुआ ज्ञान, ज्ञाता हुआ ब्रह्मवेत्ता, और ज्ञेय हुआ ब्रह्म। तो कहते हैं इससे तो ब्रह्म में परिच्छिन्नता प्राप्त हुई, ब्रह्म तीन टुकड़ों में बट गया, एक ज्ञाता, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। तो कहते हैं नहीं, ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसमें व्याकरण की दृष्टि से सत्यम ज्ञानम और अनंतम और ब्रह्म, ये चारों एक ही विभक्ति के प्रयोग हैं, इसलिए इन सब का मिलाकर के ही अर्थ है। तो प्रश्न यह है कि ब्रह्म सत्य है तो सत्य ब्रह्म का विशेषण है कि ब्रह्म की उपाधि है कि ब्रह्म का लक्षण है। अब ये जरा है तो टेक्निकल बात, लेकिन इससे एक बात जो फर्क पड़ता है दर्शन शास्त्र में वो समझ लीजिए तो आप अप्रिशिएट करेंगे। फिर यदि ये विशेषण हो तो ब्रह्म विशेष्य हो जाएगा। विशेषण माने एडजेक्टिव जैसे होता है अंग्रेजी में, उसका गुण कोई विशेष, तो ब्रह्म जो है वो सगुण सिद्ध होगा। और अगर ये उसके लक्षण हो तो फिर ब्रह्म जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा, सिर्फ उसको दिखाने भर का काम ये सत्यम और ज्ञानम और अनंतम करेंगे। तो शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं कि ये सत्यम ज्ञानम और अनंतम ये ब्रह्म के लक्षण हैं, और रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्म के विशेषण है। दोनों का अंतर जो है ना, वो इस वजह से है कि रामानुज संप्रदाय में ब्रह्म को सगुण मानते हैं और शंकर संप्रदाय में ब्रह्म निर्गुण निराकार है। तो अगर निर्गुण निराकार है तो उसका तो कोई विशेषण नहीं होगा। तो अपनी अपनी शैली से दोनों के विचार ठीक हैं। अब जरा विशेषण और लक्षण का थोड़ा अंतर भी देख लीजिए। मैंने पहले कहा ये थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन दो चार मिनट में निबट जाएगी। तो जैसे हम कहते हैं कि कमल नीला है, कमल का फूल नीले रंग का है, तो संसार में कितने कमल हैं? हजारियों, लाखियों, लाखों। तो कमल अनेक हैं, अभिप्राय कहने का हो, इसको बोलते हैं कमलत्व सामान्य। सब कमलों में कमलपना रहता है। अब उनमें से कुछ लाल हैं, कुछ नीले हैं, कुछ सफेद हैं, ये उनके रंग अलग अलग हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये कमल नीला है, तो कमलत्व का तो ग्रहण किया ही हमने, कमलपने का तो ग्रहण किया ही, लेकिन नीलेपन का भी ग्रहण किया। और उस नीलेपन ने क्या काम किया कि लाल कमल से उसको अलग कर दिया। इसको व्यावर्तन बोलते हैं, अर्थात ये लाल नहीं है, ये पीला नहीं है, ये सफेद नहीं है, ये नीला है। अब लाल रंग, वो नीला रंग जो है वो कमल में से निकाल सकते हो क्या? तो निकाल भी नहीं सकते उसे। तो जो विशेषण होगा वो उससे अलग नहीं हो सकता है, जिस वस्तु का विशेषण है वो उससे अलग नहीं हो सकता है। और उसके अलावा भी सब जगह होगा, नीला कपड़ा भी होता है, नीला कमल भी होता है, नीले और रंग के फूल भी होते हैं। तो नीलापन तो बहुत जगह है, लेकिन जिस नीले कमल की बात कर रहे हैं उसमें से नीलापन निकल नहीं सकता। तो तीन बातें हुई, एक तो सामान्य को ग्रहण करना चाहिए, और एक विशेष को ग्रहण करना चाहिए, और वो विशेष जो है वो दूसरों में उपस्थित नहीं होना चाहिए। नीलापन जो है वो लाल में नहीं होना चाहिए, तब वो अलग कर सकता है। तो जो क्वालिटी गुण जो है जो अलग कर रही है उसको तो बोलते हैं विशेषण, और जिसको अलग कर रही है उसको बोलते हैं विशेष। अब देखो कि लक्षण किसे कहते हैं। तो लक्षण ये है कि थोड़ा थोड़ा काम तो विशेषण और लक्षण का एक सा ही है। जैसे आपने कहा कि देवदत्त का मकान कौन सा है, अब ये जनरल दृष्टांत दिया जाता है, देवदत्त का मकान कौन सा है। आपने कहा जिस मकान पर कौआ बैठा है वो मकान देवदत्त का है, आपने देख लिया किस मकान पर बैठा है। अब जब वहां पहुंचे तो कौआ उड़ गया, तो उस कौए ने क्या काम किया कि मकान को दिखा तो दिया, दूसरे मकानों से अलग करके तो बता दिया, मगर वो मकान का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। अब मान लो कौआ तो ना दिखलाई पड़े किसी को, और कोई ये कहे कि भाई देवदत्त का मकान कौन सा है, पर सामने वाला कहता है कि वो जो सफेद मार्बल का मकान है ना, दो मंजिला, वो देवदत्त का मकान है। अब उसने नजर दौड़ाई कि कोई और सफेद मार्बल का तो है नहीं, सफेद मार्बल का तो यही है, जाके घंटी दी, देवदत्त निकल के आ गया। तो अब ये क्या हुआ कि इस ये जो सफेद मार्बल जो है ये भी उस मकान का लक्षण हो गया, और कौआ जो था ये भी उस मकान का लक्षण हो गया, लेकिन कौआ मकान से अलग है और मार्बल जो है वो मकान का हिस्सा ही है। तो जो अलग होकर के दिखावे बतावे उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण, और जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट होकर के उस वस्तु को लिखावे उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। तद भिन्नत्व सति बोधकत्वम तटस्थ लक्षणम, तद अभिन्नत्व सति बोधकत्वम स्वरूप लक्षणम। तो अब देखो ब्रह्म जो है वो सत्य है, ये लक्षण है कि विशेषण है? तो अगर सत्य को गुण मानते हो तो विशेषण है। लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का एक लक्षण या गुण अनंत भी तो दिया हुआ है ना, तो यहां इसको केवल सत्य मत लो, अनंत सत्य ये लक्षण करो। ब्रह्म का लक्षण है अनंत सत्य, ब्रह्म का लक्षण है अनंत ज्ञान और ब्रह्म का लक्षण है स्वयं अनंत। ये तीन लक्षण शंकराचार्य भगवान मानते हैं। तो लक्षण क्या करता है? विशेषण तो सिर्फ उसी समान जाति वाली चीजों से, जैसे नीला कमल हुआ तो कमलों में ही जो लाल पीले हरे नीले और रंग वाले हैं उनसे अलगाव करता है। और लक्षण जो है वो चाहे सजातीय हो चाहे विजातीय हो सबसे अलगाव करता है। ये दोनों में फर्क है। और लक्षण जो है वो स्वरूप में हो भी सकता है और स्वरूप का अंग नहीं भी हो सकता है। तटस्थ लक्षण है तो स्वरूप का अंग नहीं होगा, स्वरूप लक्षण है तो उसके स्वरूप का ही अंग होगा। अब सत्य की परिभाषा कल आपको बताई थी कि जिसका जो स्वरूप जैसा निश्चित हो, यदि उसका व्यभिचार ना हो, माने उस स्वरूप से वो ना हट सके ना गिर सके, तो उसको सत्य बोलते हैं। अब एक आदमी को 20 वर्ष बाद देखा और वो मान लो बाबा हो गया तो नहीं पहचान पाए उसको। तो क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उसका जो रूप रंग था वो बदल गया। अगर उसकी पहचान ऐसी होती जो रूप रंग से संबंध नहीं होती तो उसे तुरंत पहचान लेते। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स गवर्नमेंट बनवाती है ना, आप बताइए आपका कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो बोले मेरी छाती पर तिल है। अब वो नारायण कितने भी बड़े हो जाओ वो तिल आपका जो है जाएगा नहीं, वो आपकी परमानेंट पहचान है, वो तो हुआ स्वरूप लक्षण। और जवान था बुढ़ा हो गया, बालक था इतने फुट का था, बड़ा होकर इतना लंबा हो गया, तो ये तो सब बदलने वाले हैं लक्षण, तो ये तटस्थ लक्षण है। तो जब हम कहते हैं कि अनंत सत्य ये ब्रह्म का लक्षण है, तो यहां सत्य का मतलब सत्ता मात्र होता है, क्योंकि अनंत माने अखंड, जिसके टुकड़े ना हो सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये पत्ता है हरा और ये फूल है पीला, तो हरा पत्ता है और पीला फूल है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो है जो है वो दोनों में कॉमन चीज है, तो उसका अपलाप नहीं हो सकता है। ऐसे ही संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो, सब में सत्ता बनी रहती है, इसको अस्थि बोलते हैं। अब भगवान को हमको देखना है तो पंचदशीकार कहते हैं कि क्या देख रहे हो तुम? देख रहे हो कि ये आदमी है, ये औरत है, ये पशु है, ये पक्षी है? सत्ता को देखो ना, वो सत्ता ब्रह्म है। आप उसका मूल्यांकन क्यों करते हो कि ये कौन है, क्या है, कैसा है? ये शत्रु मित्र जो है ये मूल्यांकन है। और जो पंचभूतों के बना हुआ शरीर है वह ये तो निर्मूल्य है, वो मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सत्ता सन मात्र को देखो। तो अनंत सत्य कहने का मतलब है कि ब्रह्म जो है वो सन्मात्र है, सत्ता मात्र है। अब नारायण ये कहने में तो बहुत सरल हो गया, लेकिन इसको थोड़ा दिन आप अभ्यास करो। जहां जहां देखो वहां वहां नाम रूप संबंध इन तीनों को हटा के देखो। नाम रूप संबंध, क्रिया भी लगा लो नाम रूप में ही आ जाता है सब। नाम रूप संबंध, इन तीनों को हटा के देखो क्या देखते हो, तो सन्मात्र सत्ता मात्र ही मालूम पड़ता है। अच्छा, अपने में नाम रूप और क्रिया को हटा के देखो, तो सिर्फ हूं मालूम पड़ेगा ना, सामने वाली चीज में है मालूम पड़ेगा और अपने में हूं मालूम पड़ेगा, और जो है वही हूं है, माने सत्ता मात्र तो एक ही है ना, उसको ही ब्रह्म बोलते हैं। तो ये अनंत सत्य का की परिभाषा शंकराचार्य भगवान ने की कि अगर हम इसे गुण मानेंगे तो हमें ये मानने पड़ेंगे कि कोई ब्रह्म ऐसा भी हो सकता है जिसमें सत्ता नहीं होती है तभी तो अलगाव करेगा। बोले ये भगवान जो है वो उदार हैं। अरे उदार तो बहुत लोग होते हैं, तो फिर लगाते हैं विशेषण के नहीं, परम उदार है, और तो सब उदार हैं और ये परम उदार है, माने ये निरपेक्ष उदार है। अब वो परम उदारता से अलग हो सकते हैं भगवान के नहीं, ये प्रश्न है। तो भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं हो सकते, इतनी अशक्ति वो उनमें स्वीकार करते हैं, और अपने यहां ऐसा मानते हैं वेदांत में कि स्वरूप में कुछ प्रवेश ही नहीं करता है, जो सन्मात्र है उसमें सब पहले से ही प्रविष्ट है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। जहां उदारता है वहां भी सत्ता है, जहां परम उदारता है वहां भी सत्ता है, तो सत्ता मात्र ही ब्रह्म है। इसी प्रकार से अब जब सत्ता मात्र हो गई तो कार्य का तो निषेध हो गया, तो फिर ब्रह्म कारण रूप होगा। तो बोले चलो कारण मान लेते हैं, लेकिन सामने जड़ता दिखती है कि चेतनता दिखती है? सामने की वस्तु में जड़ता दिखती है कि चेतनता दिखती है? जड़ता दिखती है, तो जड़ता का जो उपादान कारण होगा वो तो जड़ ही होगा, इसलिए जो सामने वाली वस्तु में सत्ता मालूम पड़ रही है वो जड़ सत्ता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि सारा संसार जड़ से ही निकला है, क्योंकि वो सामने ही देखते हैं, अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है। सामने देखोगे तो जड़ सत्ता ही हाथ लगेगी, और अपने अंदर देखोगे तो चेतन सत्ता हाथ लगेगी। तो बोले ये फिर ब्रह्म जो है जड़ हो गया? तो बोले नहीं, ज्ञानम, सत्य तो है, सत्ता मात्र तो है वो, लेकिन जड़ सत्ता नहीं है, वो ज्ञानम है, ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, तो वो भी खंड खंड होगा ज्ञानम भी? तो बोले नहीं, अनंतम ज्ञानम, ये अनंत का अन्वय सत्यम के साथ भी होगा और ज्ञानम के साथ भी होगा। ये बिना भाष्य को पढ़े हुए ये समझ में नहीं आएगा। होमवर्क जो है इसमें इतना ही है कि एक दफे कम से कम हिंदी हिंदी भाष्य की पढ़ जाओ। मैं भाष्य के हिसाब से ही बोल रहा हूं पूरा का पूरा, भाषा बस मेरी है। नारायण, तो अनंतम ज्ञानम, ज्ञान जो है ये भी खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। तो ज्ञान में क्या टुकड़े हैं? तो ज्ञान में टुकड़ा है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। बोले ज्ञाता ब्रह्म है? बोले नहीं, ज्ञाता ब्रह्म नहीं है ना, ब्रह्म से पृथक तो नहीं है, लेकिन ज्ञाता तो परिच्छिन्न एंटिटी है, वो ज्ञान से भी भिन्न है और ज्ञेय से भी भिन्न है, उसको ब्रह्म बताना इष्ट नहीं है। इस ये जरा आज के माहौल में थोड़े बार बार समझने की जरूरत है, क्योंकि सबको वेदांत का इतना संस्कार तो है कि सब ब्रह्म है, ब्रह्म सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है ना, तो सब ब्रह्म है इसका मतलब क्या है? जैसे रस्सी में आप सांप देख रहे हो तो सामने वाला कहता है सांप है, माने मैं कहता हूं कि सांप है, जानकार कहता है कि सांप नहीं है, रस्सी है, तो मैं मान लेता हूं कि ये सांप भी रस्सी ही है। अब जरा रस्सी से पूछो कि हे रस्सी रानी, आप सांप हैं कि रस्सी हैं, तो वो क्या उत्तर देगी? मैं सांप भी हूं और रस्सी भी हूं, ये उत्तर देगी? वो तो ये उत्तर देगी कौन सा सांप, क्योंकि रस्सी को तो पता ही नहीं है कि मैं सांप हूं। रस्सी को तो यही मालूम है कि मैं रस्सी हूं। जो भ्रम से चीज दिखलाई पड़ती है वो अधिष्ठान में होती नहीं है। तो ब्रह्म में ये जगत नहीं है, जगत तो ब्रह्म है, ये तो सर्प सांप के समान है। जगत तो ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म जो है वो जगत नहीं है। ये जीव तो ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म जो है वो जीव नहीं है। ये बात जरा आती तो देर से समझ में है, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत सी समस्या हल हो जाती है। एक गलत चीज मान लो ना तो फिर आगे प्रॉब्लम होती है। ज्ञान जो है वो कभी डिस्कनेक्टेड नहीं होता है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से जुड़ा रहता है। तो कहते अनंतम ज्ञानम, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों खंडों में विभाजित जो नहीं हुआ है वो ब्रह्म का लक्षण है, अनंतम ज्ञानम। अब बोले कि अनंतम ब्रह्म एक तीसरा लक्षण है, अनंतम ब्रह्म बस आ चुकी ये बात, लेकिन फिर दोहरा देता हूं। जो देश से न कटे, काल से न कटे, वस्तु से न कटे, उसको अनंत बोलते हैं। जो कट जाए उसको परिच्छिन्न बोलते हैं। परिच्छिन्न परि माने चारों ओर से, छिन्न माने कटा हुआ, तो परिच्छिन्न माने चारों ओर से कटा हुआ, अर्थात देश से कटा हुआ। अब जैसे मेज इतनी बड़ी है तो इसके बाहर मेज नहीं है, तो ये कट गया, आकाश जो है इतना कट गया है। आकाश नहीं कटा माने कटा हुआ सा मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये मेज तो कट गई। तो जो देश से न कटे, काल से न कटे, वस्तु से न कटे, ऐसी कौन सी वस्तु होगी? जो देश में भी होगी, जो काल में भी होगी, जो वस्तु में भी होगी और इनके बिना भी होगी, वही देश काल वस्तु से नहीं कट सकती। जैसे ये आकाश है, ये मेज में भी है, मेज के बिना भी है, इसलिए मेज से नहीं कटता। तो ये कितना बड़ा ब्रह्म है? बोले ये आकाश जितना बड़ा है उतना बड़ा। आकाश तो उसके एक अंश में कल्पित है, अभी आगे की श्रुति आएंगे। तो नारायण, आकाश से भी जब वो नहीं कटता है तो ये धरती से कैसे कट जाएगा, हमारे शरीर से कैसे कट जाएगा? तो न देश से कटता है, न काल से कटता है। कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। नचिकेता का मूल प्रश्न ये था ना कि कोई कहते हैं कि मरने के बाद ये आत्मा रहता है और कोई कहते हैं कि नहीं रहता है, आप बताओ रहता है कि नहीं रहता है? तो यमराज ने उत्तर दिया कि जो आज है सोई कल है, जिसकी सत्ता आज है उसकी सत्ता कल भी है, और जिसकी सत्ता आज नहीं है उसकी सत्ता कल भी नहीं रहेगी। ये 100 बरस पहले ये शरीर नहीं था, तो एक दिन इसकी ये भी खत्म हो जाएगा, शरीर तो नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहा नारायण। अच्छा, तो जीवात्मा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बोले मैं रहना चाहूंगा तो रहूंगा, और ये सब हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर है। अविद्या, कामना और कर्म, इन तीन से जब ये चैतन्य बंध जाता है तो इसको शरीर धारण करने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें ईश्वर भी चाहे कि उसको मुक्त कर दें तो नहीं कर सकते। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथा विभजाम्यहम्, इसकी व्याख्या में शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि मेरे पास जो जिस भाव से आता है मैं उसको वही प्रदान करता हूं, जो फल चाहते हैं उन्हें फल दे देता हूं, जो ज्ञान चाहते हैं उन्हें ज्ञान दे देता हूं, जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष दे देता हूं। अब हमें चाहिए तो संसार, भगवान काहे लिए मोक्ष दें आपको? तो जो मोक्ष चाहता है उसको तो अगला जन्म नहीं मिलेगा, और जो चाहता ही नहीं है, भले ही सत्संग में बैठते हो लेकिन भीतर से चाहते नहीं है, तो जन्म तो होगा नारायण। अविद्या, कामना और कर्म, इन तीनों से मनुष्य बंधा हुआ है। तो काल से हो गया, अच्छा वस्तु से कौन नहीं कटेगा? जैसे घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़े में घड़ा नहीं है और घड़ा में कपड़ा नहीं है, तो एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन घड़े में मिट्टी है और कपड़े में सूत है,